समूएल का पहला ग्रंथ परिचय। इब्रानी संस्करणों में समूएल के दोनों ग्रंथ एक इकाई के रूप में दिए गए हैं। इसी प्रकार आगे आने वाले राजाओं के दोनों ग्रंथ भी इन संस्करणों में एकीकृत हैं, लेकिन सुविधा के लिए बाद में उन ग्रंथों को दो दो खंडों में विभाजित कर दिया गया है। यूनानी सप्तति अनुवाद में तो उक्त दोनों ग्रंथों के चारों खंडों को एकीकृत कर उनका नाम राज्यों के ग्रंथ रख दिया गया, और राज्यों के ग्रंथ की जगह प्रचलित लातिनी अनुवाद में उन्हें राजाओं के ग्रंथ कहा गया। इसलिए कभी कभी उक्त चारों ग्रंथों को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं: समूएल का पहला ग्रंथ अर्थात राजाओं का पहला ग्रंथ, समूएल का दूसरा ग्रंथ अर्थात राजाओं का दूसरा ग्रंथ, राजाओं का पहला ग्रंथ अर्थात राजाओं का तीसरा ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अर्थात राजाओं का चौथा ग्रंथ। समूएल के दोनों ग्रंथ। समूएल के ग्रंथों में न्यायकर्ताओं के बाद इसराइलियों के इतिहास का विवरण मिलता है। न्यायकर्ताओं के काल में इसराइलियों का कोई स्थायी नेता नहीं था, अतः धर्म तथा नैतिकता की बड़ी हानि हुई थी। इस परिस्थिति से उबरने के लिए इसराइलियों ने आसपास की जातियों की तरह एक राजा चाहा और अपने देशवासियों में से एक को राजा बना लिया। समूएल के दोनों ग्रंथों में समूएल के जन्म से लेकर राजा दाऊद की मृत्यु तक इसराइलियों का इतिहास दिया गया है। लगभग 1040 से 970 ईसवी पूर्व तक समूएल के ग्रंथों में यह प्रतिपादित किया गया है कि इसराइलियों का राजा और शासक वास्तव में प्रभु ईश्वर है। प्रत्येक राजा और शासक ईश्वर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि मात्र है। राजा का कर्तव्य है कि वो ईश्वर के नाम पर शासन करे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करे और अपनी प्रजा से भी उनका पालन कराए। समूएल के ग्रंथों का लेखक ईशभक्त दाऊद को ऐसा ही राजा मानता है और उन्हें समस्त राजाओं का आदर्श बताता है। दूसरे सभी राजाओं का महत्व दाऊद से तुलना के आधार पर निर्धारित किया गया है। यद्यपि लेखक इस बात से पूर्णतः परिचित है कि पृथ्वी पर आदर्श धर्मराज्य संभव नहीं है, इसके अतिरिक्त आदर्श राजा दाऊद मसीह के पूर्वज और उनके प्रतीक भी हैं। अतः इन ग्रंथों का लेखक राजा दाऊद को दिए गए ईश्वर के इस वचन पर बल देता है कि मसीह उन्हीं के घर में जन्म लेंगे और इस कारण मसीह दाऊद की संतान होंगे। इसीलिए नए विधान में ईसा मसीह को राजा दाऊद का पुत्र कहा गया है। इसके अनुसार धर्माचार्यों ने राजा दाऊद और ईसा मसीह के चरित्र में समानताएं दिखलाई हैं। समूएल के ग्रंथों में वर्णित राजा दाऊद का आदर्श राज्य बाद में उनके उत्तराधिकारियों के कुकृत्यों के कारण लुप्त हो गया। उदाहरणार्थ, राजा दाऊद द्वारा स्थापित इजरायली साम्राज्य विभाजित हो गया, उनके द्वारा अधिकृत प्रदेश हाथ से निकल गए, उनके द्वारा निर्धारित उपासना विधान तथा स्वयं ईश मंदिर भी भ्रष्ट हो गया। इसके बावजूद धर्मग्रंथ में राजा दाऊद के वंश की मान मर्यादा तथा उसके आध्यात्मिक वैभव की झलक देखने को मिलती है। कई नबी इस ओर संकेत करते हैं कि मसीह राजा दाऊद के घराने में जन्म लेंगे और राजा दाऊद की कीर्ति मसीही कीर्ति का संकेत भी देती है। नबी नातान द्वारा ईश्वर दाऊद को आश्वासन देता है कि वो स्वयं उसके लिए एक ऐसा वंश स्थापित करेगा जो शाश्वत होगा और जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। समुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 4-17। नबी नातान की मसीह संबंधी इस भविष्यवाणी के बाद धर्मग्रंथ में लगातार इस ओर संकेत दिया गया है कि मसीह राजा दाऊद के वंशज होंगे। यहां तक कि जब राजा दाऊद का घराना अत्यंत दीन अवस्था को पहुंच गया तब भी नबी गण उस टूटी फूटी झोपड़ी और विनष्ट प्राय ठूंठ से एक महान अंकुर के फूटने की बात कहते रहे। ये अंकुर ईश्वर का वो अभ्यंजित अर्थात मसीह पुरुष होगा जिसका साम्राज्य सार्वभौम और शाश्वत होगा। यद्यपि मसीह दाऊद के वंशज थे और उनका जन्म राजा दाऊद के नगर बेथलहम में होगा, मीका अध्याय 5 पद संख्या 1, फिर भी दाऊद ने उन्हें अपना प्रभु कहा है। स्तोत्र 110। वही ईश प्रेरित महायाजक और प्रभु भी होंगे।